हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अपनी जगह से थोड़ा और आगे बढ़कर बैठकर समर बोला, देखो ये लैंप, वाओ ये कितना सुंदर है। वैसे ये सारी चीजें तुम्हारी पसंद की हैं क्या? तुम्हें ऐसे कलर पसंद हैं? ये डार्क ग्रीन और गोल्डन, मुझे तो अच्छा लगा ये कॉम्बिनेशन। ऋषभ के लिए वो सब सामान्य था, क्योंकि वो रोज उस कमरे में आता जाता और वहां रहता था, इसलिए उसे समर जितना अमेजिंग नहीं लग रहा था जितना कि समर तारीफ कर रहा था। इसलिए वो बोरियत से जम्हाई लेते हुए अकेले काउच कर पैर फैलाकर बैठ गया। नहीं, इतना कुछ मैंने ध्यान नहीं दिया, और क्या करना है इन सब चीज़ों का, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर रूम में रहता भी नहीं हूँ, और ये सब कुछ सारी चीज़ें, इंटीरियर डेकोरेशन, सब कुछ दीदी की पसंद का ही है, यहाँ घर पर मेरा सारा सामान वही सिलेक्ट करती हैं, उसने जवाब दिया। समर काफ़ी इम्प्रेस होते हुए बोला, अरे वाह, भाभी की पसंद तो बहुत अच्छी है। इस पर ऋषभ ने थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मगर ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए चलो अब पहले बताओ स्टडीज़ के लिए क्या करना है, वैसे भी तुम मुझे पढ़ाने के लिए आए हो ना यहाँ पर। ऋषभ की बात सुनकर समर ने भी एकदम सीरियस लुक देते हुए उसकी तरफ देखा और फिर एक चेयर खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहा, हाँ पढ़ाने के लिए ही आया हूँ, तुम क्यों बार बार ऐसे याद दिलाते रहते हो, क्या तुम्हें लगता है किसी और वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ? समर ने बिना सोचे समझे ये बात बोल दी, लेकिन ऋषभ उसकी ये बात सुनकर कुछ और ही सोचने लगा। फिर तभी समर ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हे ऋष, कहाँ थो गए, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। चलो अच्छा ये बताओ, तुम्हें कौन से टॉपिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम है, और लास्ट ईयर तुम किस सब्जेक्ट में फेल हुए थे, उस पर ही ज्यादा ध्यान देंगे हम। उसके इस सवाल पर ऋषभ ने कहा, नहीं तुम पिछले साल की बात मत करो, तब तो मैंने एक एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, और बाकी जो दिए भी थे तो उसमें मेरे बहुत कम नंबर आए थे, इसलिए वो पिछली बातें छोड़ो और अभी इस साल की बात करते हैं। समर समझ गया कि ऋषभ जरूर बुरे नंबरों से फेल हुआ होगा, इसीलिए वो इस बारे में बात नहीं कर रहा है, तो समर उसे चिढ़ाते हुए बोला, अरे नहीं देखना तो पड़ेगा ही, चलो तुम मुझे अपना रोल नंबर बताओ, मैं तुम्हारा रिजल्ट चेक करता हूँ, और उससे मुझे आइडिया हो जाएगा ना कि तुम्हें कितना पढ़ाना है। और इतना बोलते हुए उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, तो ऋषभ ने उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन छीन लिया और कहा, नहीं मैंने कहा ना इस बारे में बात नहीं करनी, चलो अभी आगे की बात करते हैं। इसी छीना झपटी में उसका हाथ समर से टच हुआ और इसी में उनके चेहरे एकदम आमने सामने आ गए। समर का पूरा ध्यान अपना मोबाइल फ़ोन वापस लेने की तरफ था, लेकिन ऋषभ अब उसके चेहरे की तरफ हो गया था। समर को इतने नज़दीक से देखते हुए ऋषभ को पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा फील हुआ। वैसे वो समर को लेकर कुछ तो फील करता है, इतना तो उसे समझ आता है, लेकिन क्या ये उसके टच से उसकी धड़कनें बढ़ गईं? ऋषभ जल्दी से पीछे हुआ और उसने समर का मोबाइल फ़ोन छोड़ दिया और अपनी जगह से उठकर उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। समर को उसकी ये हरकत थोड़ी अजीब लगी। अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हुए उसने कहा, क्या हुआ ऋषभ? उसके इस सवाल पर ऋषभ एकदम सकपका गया और उसी तरह कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम रुको मैं बताता हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ये वाला जो बिजनेस सब्जेक्ट होता है, ये मुझे इसमें कुछ भी नहीं समझ आता यार, ये इतना कन्फ्यूजिंग क्यों है, मुझे तो शायद कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब फंस गया हूँ। सामने के बुकशेल्फ से कुछ किताबें निकालकर सामने स्टडी टेबल पर रखते हुए एकदम परेशान होता हुआ ऋषभ बोला। समर बहुत ही ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। उसके मुंह बनाते देख समर की हंसी निकल गई और वो अपने मुंह पर हाथ लगाते हुए बोला, हा हा हा, कैसे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है नर्सरी के बच्चे भी इस तरह से नहीं रोते, और तुम हो कि इतने बड़े हो गए हो फिर भी। उसके इस तरह हंसने पर ऋषभ ने अपने दोनों हाथ सामने की तरफ करके पाउट बनाया, क्योंकि उसे लग रहा था समर उसका मजाक उड़ा रहा है। ऋषभ को इस तरह करते देख समर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए एकदम सीरियस होकर बोला, जस्ट रिलैक्स फर्स्ट, मैं समझाता हूँ, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बस हम जिस पर ध्यान नहीं देते वही हमें डिफिकल्ट लगता है। उसकी ये बात सुनकर ऋषभ ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। अपनी बात समझाते हुए समर ने सामने रखी उसकी एक बुक ओपन की और पूछा, ये पहला चैप्टर, ये तो आता ही होगा ना? इस पर ऋषभ ने नहीं में अपना सिर हिलाया, तो फिर समर ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, इसका मतलब पहले चैप्टर से शुरू करना होगा सब कुछ? उसके इस सवाल पर ऋषभ ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। समर समझ गया कि उसे सबसे पहले शुरुआत में ही इजी टॉपिक समझाने होंगे, इसलिए उसने कॉपी निकालकर ऋषभ से नोट्स बनाने के लिए कहा और शुरुआत में कुछ इजी टॉपिक स्कूल से समझाए और उससे रिलेटेड कुछ पेज के नोट्स बनवाए। ऋषभ भी इस साल पास होकर अपने कॉलेज का फाइनल ईयर क्लियर करना चाहता था, इसलिए वो भी थोड़ा सीरियस होकर सब कुछ समझ रहा था और पढ़ रहा था। अगली सुबह शिविका अपने ऑफिस पहुंची। उसके केबिन में जाने से पहले ही जतिन उसके रास्ते में आ गया और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बोला, मैम मैम वो। जतिन ने उसके नज़दीक आते हुए धीमी आवाज में उसके कान में ये बात बोलने की कोशिश की। उसकी इस हरकत की वजह से शिविका थोड़ी सी इरिटेट हो गई और अपनी जगह पर रुककर थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाती हुई बोली, क्या है जतिन, मैम मैम वो कर रहे हो, सीधी तरह से नहीं बोल सकते क्या? शिविका के इस तरह से चिल्लाने पर जतिन ने सिर झुकाकर माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, बट वो केबिन में वो मिस्टर मेहरा आकर बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से आपका वेट कर रहे हैं। मैंने आपको कॉल करने की भी ट्राई किया लेकिन आपका नंबर। उसके इस तरह चुप हो जाने पर शिविका ने पूछा, क्या हुआ मेरे नंबर को, और मुझे कॉल करके बता देते, वैसे वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं? जतिन ने उसकी बात का जवाब दिया, मैम आपका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया बता रहा था, इसलिए मैसेज भी रिसीव नहीं हो रहे होंगे, और यही मैं आपको बताना चाहता था, बट आपने। जतिन ने अपनी बात पूरी नहीं की क्योंकि शिविका के इस तरह बिना किसी बात के चिल्लाने की वजह से वो काफ़ी बुरा फील कर रहा था और ये बात शिविका को भी समझ आ रही थी, इसलिए वो अब काफ़ी नरमी से बोली, सॉरी बट मुझे लगा पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, इसलिए ही मैंने, बट कोई बात नहीं, उन्हें मीटिंग रूम में बिठाओ और मैं बस अभी आती हूँ। वैसे कितनी देर पहले आए हैं वो? शिविका के सॉरी बोलते ही जतिन के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो खुशी खुशी शिविका की बात का जवाब देते हुए बोला, मैम वो 10 बजे से ही आकर बैठे हुए हैं और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ वो उनकी गर्लफ्रेंड, सॉरी आई मीन वो उनकी असिस्टेंट भी है, क्या नाम है उसका? नाम याद करने की कोशिश करता हुआ जतिन वहाँ पर खड़ा अपना सिर खुजा रहा था, तभी पीछे से आता हुआ करण एकदम से बोला, मिस सोनिया वो भी यहाँ है क्या? ओके मैं जाकर देखता हूँ। अपनी बात बोलकर करण मीटिंग रूम की तरफ ही बढ़ने लगा तो शिविका ने उसे पीछे से आवाज़ देकर रोकते हुए बोली, रुको करण, तुमसे कहा क्या मैंने जाने को, जो खुद से ही जाने के लिए उतावले हो रहे हो, और वैसे भी वो सोनिया कौन सी बहुत बड़ी VIP गेस्ट है और उसका नाम भी पूरा याद है तुम्हें? शिविका का गुस्से भरा चेहरा देखकर तुरंत ही माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी बट मुझे लगा वो लोग इतनी देर से बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं तो कोई तो जाएगा ना उन्हें कंपनी देने के लिए, बस इसीलिए मैं, और नाम वो तो मैं उसके साथ ही बैठा हुआ था, याद होगा आपको जब आपकी फर्स्ट मीटिंग थी तब, बस इसीलिए मुझे याद है और कुछ नहीं।
उसके इस तरह पूरी बात एक्सप्लेन करने पर शिविका ने इरिटेट होते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और अभी तुम मेरे साथ ही चलो, और कोई कंपनी देने की ज़रूरत नहीं है ऐसे बिना बुलाए आने वालों को, पता नहीं क्या चलता है उस आदमी के दिमाग में और क्यों वेट कर रहा है वो इतनी देर से, कोई और काम नहीं रहता क्या उसके पास? शिविका की तरफ देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए करण ने कहा, मुझे तो लगता है फ़िलहाल यही उसका सबसे इम्पोर्टेंट और फेवरेट काम है। शिविका ने उसकी बातों का जो मतलब समझा वो तुरंत ही सक पकाते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जतिन भी वहाँ पर उन दोनों के बीच ही खड़ा है, इसलिए करण बड़ी ही चालाकी से अपनी बात बदलते हुए बोला, आई मीन ये प्रोजेक्ट, उसका जो इवेंट हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उसमें ही उसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये बोल रहा हूँ मैं आपको, क्या लगा मैम? करण ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसके इस तरह मुस्कुराने पर शिविका उसे डांटकर चुप कराते हुए बोली, जस्ट शट अप करण, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और उसने वहाँ पर कंफ्यूज होकर खड़े जतिन की तरफ देखते हुए कहा, जतिन तुम उन लोगों को चाय कॉफ़ी के साथ मेरे वहाँ कुछ ही देर में आने का मैसेज भिजवा दो। ओके मैम। इतना बोलकर जतिन वहाँ से चला गया और वो दोनों एक साथ ही शिविका के केबिन में आ गए। करण अभी भी शरारत से मुस्कुराते हुए शिविका की तरफ ही देख रहा है। उसके इस तरह से देखने पर शिविका को पिछले दिन की बातें याद आ रही हैं, इसलिए वो उससे नज़रें चुरा रही है और करण बार बार उसकी आंखों में झांककर देखने की कोशिश करते हुए उसके आगे पीछे मंडरा रहा है। शिविका ने थोड़ी झुंझलाहट से बोला, क्या कर रहे हो करण, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओ और देखो क्या क्या चीज़ें फाइनल हो गई हैं और क्या बाकी हैं, क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, 4th दिन इवेंट है, हम कोई भी गड़बड़ नहीं होने दे सकते और सब कुछ अभी इस साहिल को बताना पड़ेगा। शिविका को इस तरह से परेशान देखकर करण भी थोड़ा सीरियस हो गया। उसने अपनी मस्ती बंद की लेकिन शिविका को देखा तो वो अभी भी टेंशन में थी, इसलिए वो आगे आया और उसकी चेयर के पीछे खड़े होकर उसने उसकी गर्दन में हाथ डाला और अपना चेहरा उसके कंधे पर रख दिया। शिविका थोड़ी बेबसी से बोली, क्या कर रहे हो करण, मैंने कुछ काम करने को बोला है तुमसे और तुम, करण उसके कान में बोला, रिलैक्स थोड़ी देर, बस 2 मिनट, सब कुछ भूलकर शांत हो जाओ, सब हो जाएगा। और मैं हूं ना, मैंने प्रोग्रेस रिपोर्ट पहले ही बना रखी है, बस कुछ पॉइंट ही अपडेट करने होंगे जो आज का काम होगा, बाकी कल मैं सब काम खत्म करके गया था, इसलिए जस्ट काम डाउन। इतना बोलते हुए करण ने अपना गाल उसके गाल से रब किया तो शिविका की आंखें अपने आप ही बंद हो गईं क्रमशः।